हरे कृष्ण। तो आप सबका मैं इस भागवत क्लास में स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहां पर एकत्रित हुए। और खास बात यह है कि आज मेरे परिवार के कुछ सदस्य भी यहां पर मौजूद हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मेरे पिताजी हैं और मेरी माता जी हैं और मेरे अंकल हैं, आंट हैं, मेरे ब्रदर हैं, तो वो भी यहाँ पर आए। तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। प्रार्थना है कि इसके बाद जो है प्रसाद भी है हर सबके लिए, तो आप कृपा करके प्रसाद लेने के भी आएगा, तो बहुत खुशी होगी। तो आज संभव ऐसे भगवान की ऐसी ऐसी आयोजना थी कि आज उनका जन्मदिन भी पड़ा और आज ही दिन मुझे संभव ऐसा मौका मिला इस क्लास को लेने का। ऐसा प्लान नहीं था लेकिन ऐसा हो गया संभव। मैं काफी बार मैंने मना किया, हालांकि ये पता था कि मंडे को जो है ये तिथि है, आज बहुत महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य का 13वां दिवस है, मतलब आज उन्होंने शरीर छोड़ा था, बाकी नित्य लिए में प्रविष्ट हुए थे, तो मुझे सेवा करने का मौका प्राप्त हो रहा था। मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था क्योंकि मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता हूँ इतने बड़े आचार्य के ऊपर बोलने के लिए, लेकिन फिर सब भक्तों ने मुझे बोला, उनका आदेश प्राप्त करके फिर मैंने स्वीकार किया। फिर पता चला कि 6 तारीख को ही पड़ रहा है, 6 फरवरी को आज भी था। तो पहले प्रोग्राम बनना था शायद घर में कोई छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उन्हीं की इच्छा हुई कि घर में ना करके मंदिर में सब भक्तों के प्रसाद करें, तो वो यहाँ आ गए और जो है वो ऐसा मैं यहाँ आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है वो अच्छी तरीके से सेवा कर पाऊंगा और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से सेवा कर पाऊँ और श्रीपद रामानुजाचार्य के गुणगान में कुछ बोल पाऊँ आप सबकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये प्रार्थना करके मैं आज की चर्चा शुरू करता हूँ। तो आज जो है वो श्रीपद रामानुजाचार्य का 13वां दिवस है। हम शास्त्रों में सीखते हैं कि जब हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो जिस तरीके से किसी बच्चे को अगर शिक्षा लेनी होती है भौतिक दृष्टिकोण में भी, तो उसको एक स्कूल में जाना पड़ता है, एक बोर्ड, जो स्कूल किसी बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस स्कूल के प्रमाणित टीचर से वो पढ़ता है और फिर जो बोर्ड के द्वारा एग्जाम आता है उसमें वो क्लियर करता है। तो इस विधि से फिर जब बोर्ड से उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो 10th क्लास या 12th क्लास को पास करके उसको ग्रेजुएट बोला जाता है। तो उसी तरीके से हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का भी एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जिसकी तुलना भौतिक दृष्टिकोण से टीचर से करते हैं, और एक स्कूल की और एक बोर्ड की जरूरत पड़ती है जिसकी तुलना हम एक संप्रदाय से करते हैं। तो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 संप्रदाय भगवान ने हमें दी, शायद आपको आप जानते होंगे। वो 4 संप्रदाय कौन कौन सी हैं? जब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे कुछ 100-200 साल पहले, तो अधिकांश लोग 4 संप्रदाय को भी नहीं जानते थे, और भक्तिसान महाराज ने खासकर ये चीज को देखा और एक किताब की रचना की, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ 4 आचार्यस, जिसमें उनको बताया कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय क्या है। तो उसमें से उन्होंने बताया कि एक संप्रदाय है, एक बोर्ड है, एक तरीका है भगवान को जानने का, जो कि जो ब्रह्मा जी से आता है, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के उस परंपरा में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं। तो कोई भी प्रमाणिक गुरु को हम स्वीकार करें तो वो 4 संप्रदाय में से होना चाहिए। जैसे हम किसी टीचर से पढ़ें तो वो जो है एक तो किसी प्रमाणिक स्कूल से होना चाहिए, जैसे प्रमाणिक डिग्री वो ले चुका हो तभी उसे पढ़ने का फायदा है। तो उसी तरीके से आते हैं आध्यात्मिक गुरु भी 4 संप्रदाय से होना चाहिए। तो एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से आता है, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उस परंपरा से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इस कौन जो है वो इस ब्रह्मा संप्रदाय में आता है। फिर भगवान ने ज्ञान जो है वो अपनी भार्य लक्ष्मी जी को दिया, तो एक लक्ष्मी संप्रदाय आती है। फिर एक ज्ञान दिया है जो कुमार की तरफ से आता है, 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी तरफ से भी उनकी ज्ञान प्राप्त होता है हमें। तो एक संप्रदाय वो है 4 कुमार की संप्रदाय, और 4थी संप्रदाय जो है वो शिव जी के द्वारा वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसको रुद्र संप्रदाय। तो शिला भक्ति सिद्धांत सदस्य ठाकुर यहाँ पे बताते हैं जो पहली संप्रदाय आती है वो रुद्र संप्रदाय है, सबसे पहले शिव जी के द्वारा में ज्ञान प्राप्त। फिर उसका दूसरी संप्रदाय जो है वो कुमार संप्रदाय है, फिर तीसरे में ब्रह्म संप्रदाय और आखिरी में ये लक्ष्मी जी के द्वारा संप्रदाय जो है स्थापित की। और कलयुग में इस संप्रदाय के जो ज्ञान है इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए भगवान के द्वारा ही चार लोगों को इस सेवा में नियुक्त किया गया, उनको एम्पावर किया गया कि कलयुग में खासकर इस संप्रदाय के ज्ञान को फैला सके, प्रचार कर सके। तो जब ब्रह्मा जी की संप्रदाय जो इस युग में जिन्होंने इसका प्रचार किया, इसको फैलाया, वो थे मध्वाचार्य। जैसे मुझे आज सुबह इस ग्रेस केशव राय बता रहे थे कि कल मध्वाचार्य का एक तिथि थी, 13वां दिवस। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 15 मई मध्वाचार्य का गुणगान किया, मध्वाचार्य के बारे में बताया कि कैसे हमारा भारत में ऐसे प्रमुख और महान संत रहे जिसमें से एक मध्वाचार्य थे। नरेंद्र मोदी ने भी उनके ऊपर 15 मिनट का जो है स्पीच दिया, का गुणगान किया। तो ब्रह्मा जी का संप्रदाय को इस युग में फैलाने वाले थे मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय को इस युग में फैलाने वाले थे निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय को इस युग में फैलाने वाले थे विष्णु स्वामी, और जो लक्ष्मी जी के द्वारा संप्रदाय आती है उसको इस युग में फैलाने का जिनको उत्तरदायित्व मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वो थे रामानुजाचार्य। तो आज जो है उन रामानुजाचार्य का 13वां दिवस है। 13वां दिवस का मतलब है कि आज उन्होंने अपनी भौम लीला, इस पृथ्वी में जो उन्होंने कार्य किया उसको समाप्ति करके भगवान की नित्य सेवा में द्वारा स्थित हो गए। तो एक वैष्णव के लिए किसी भगवान के परिकर का आना और जाना जो है दोनों ही सेलिब्रेशन। आना क्यों सेलिब्रेशन है, क्योंकि उनके आने से क्या होता है कि हमें उन्हें उनका संग प्राप्त होता है, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो बहुत खुशी का अवसर। और उनका जाना भी जो है खुशी का उत्सव भी है और गम का उत्सव भी, मिक्स फीलिंग। गम का उत्सव क्यों है या दुख का, मतलब गम की का हमें या दुख का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि उनके संग से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन खुशी की बात क्या है कि भगवान की नित्य सेवा में चले जाते हैं, तो आज मिक्स्ड इमोशन। तो 1137 AD में रामानुजाचार्य का तिरुभाव हुआ, करीबन 800 से 880 साल पहले। और ये 2017 और भी स्पेशल है क्योंकि 2017 में रामानुजाचार्य के आविर्भाव का, उनके आने का 1000th सेलिब्रेशन है, क्योंकि उनका जो प्राकट्य हुआ वो हुआ 1017 AD में, 1017 AD। तो अभी अप्रैल का महीना आएगा, तो 1 अप्रैल 2017 को श्री रामानुजाचार्य की 1000th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो ये यार अपने आप में स्पेशल। तो रामानुजाचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, ये आज हमको चर्चा करें। इससे चर्चा करने से पहले हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सदस्य की ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं वो बताते हैं कि एक आचार्य का क्या रोल होता है। जब एक आचार्य आते हैं उनको किस बात की एम्पावरमेंट मिलती है, उनको एक शक्ति का आवेश मिलता है, तो क्यों मिलता है, क्या कार्य वो करते हैं, वो उसके ऊपर एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखते हैं, उसी के ऊपर आज मैं कुछ चर्चा करूं। तो वो बताते हैं कि जैसे हमारे कथा उपनिषद में लिखा है, शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो विदंती, कि जो पाथ ऑफ राइटियसनेस है, जो पाथ ऑफ धर्म है, जो पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बहुत आसान है, कई लोगों की मानसिकता है अरे भक्ति करना तो बहुत सरल है ना, सिर्फ नाचना है, गाना है, खाना है और कुछ काम धंधा करना नहीं। ये तो उन लोगों के लिए जो एस्केपिस्ट है ना, जिन्होंने जिंदगी में कुछ और प्राप्त नहीं कर पाए और हर जगह से धोखा मिला, तो वो जो है बस सरल रास्ता अपना लिया भक्ति करने का, भगवान के कीर्तन में नाचने गाने का। तो कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि या तो अंधविश्वास को या सेंटिमेंटलिज्म को, भावुकता को या कुछ इमोशनल फीलिंग्स को भक्ति समझ लेते हैं, है ना। लेकिन आचार्य का क्या काम है कि आचार्य जो है वो वास्तव रूप में सोने और किंकर को अलग करता है, सही और गलत को अलग करता है, बताता है कि ये सही और ये गलत है, तो जब वो सही धर्म की स्थापना करता है तो वासु रूप में जो लोग अपने शरीर से आसक्त होते हैं या इंद्र तृप्ति से आसक्त होते हैं उनको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जो सही में धर्म की स्थापना करते हैं तो अनुशासन सिखाते हैं, इंद्र तृप्ति का त्याग सिखाते हैं और पाप में जीवन से निवृत्त होना सिखाते हैं, तो लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि मांस भक्षण गलत है या व्यभिचार गलत है या मद्यपान गलत है, लोग ये सुनना नहीं चाहते, लोग इसमें चीज में लिप्त होना चाहते हैं। लेकिन असली धर्म की स्थापना होती है, उनको बताया जाता है कि व्यभिचार एक पाप है, मांस भक्षण एक पाप है, मदरापान एक पाप और जुआ एक पाप। तो जब वो सही के बारे में सुनते हैं तो लोगों को के मन के हृदय में बहुत आक्रोश पैदा होता है, बहुत गुस्सा पैदा होता है, तो इसलिए ऑपोजिशन मिलता है जब भी धर्म की स्थापना होती है। तो इसलिए या तो धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं या उनके शुद्ध भक्त आचार्य कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, परीता ना साधु ना विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि हर युग में बार बार आके मैं धर्म की स्थापना करता हूं। या तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जब धर्म की स्थापना करेंगे तो बहुत रिवोल्ट मिलेगा, बहुत ऑपोजिशन मिलेगा, बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा और बहुत ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। या तो उसको भगवान सह सकते हैं, भगवान उसका विरोध कर सकते हैं, या भगवान एक शुद्ध भक्त को, एक शुद्ध जीव को ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो धर्म की स्थापना कर सके, सही और गलत की स्थापना कर सके। तो इसलिए वो आचार्य को भेजते हैं बता सके क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो है वो सही का रास्ता जो है थोड़ा कठिन का रास्ता है। सत्यमेव जयते या सत्यम शिवम सुंदरम जैसा हम कहते हैं, सत्य जो शिवम होता है ऑस्पिशियस होता है, तो उसको स्थापना करना एक भगवान यानी के शुद्ध भक्त करते हैं, तो ये आचार्य का कार्य होता है। और भक्ति साहब महाराज कहते हैं जो धर्म का रास्ता है ये बहुत कांटों से भरा है, इट इज नॉट अ बेड ऑफ फ्लावर्स, इट इज रोड ऑफ थॉर्न्स, कांटों से भरा है। और हालांकि ये यही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, वास्तव रूप में धर्म सनातन धर्म वो ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, एक ही तरीका है, लेकिन कलयुग में खासकर क्योंकि इतने गलत फहमियां हैं धर्म को लेकर, क्योंकि हम जब देखते हैं किसी साधु को देखते हैं और फिर उसके बारे में स्कैंडल सुनते हैं, तो फिर लगता है कि जिनको धर्म का सही ज्ञान नहीं है तो उनका पूरा विश्वास हट जाता है। एक जगह सेंट होते हैं, एक जगह स्विंडलर है, बड़ा मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जो सत्य के रास्ते पर है उन्हीं के जीवन में इतने बड़े बड़े स्कैंडल देखते हैं। हम जानते हैं, मतलब शायद बताने की जरूरत ना पड़े, कितने सारे एग्जाम्पल्स भारत में ही आप देख सकते हैं। अभी हम एक कॉन्क्लेव में गए थे सैटरडे को, 4 फरवरी। कॉन्क्लेव का क्या पर्पस था? एंशियंट विजडम एंड मॉडर्न बिजनेस, जिसमें बड़े बड़े लोग आए थे, एयरबस के मैनेजिंग डायरेक्टर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप प्रेसिडेंट, जितने भी इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं वो सब वहां पर मौजूद थे। तो टॉपिक क्या था कि जो एंशियंट विजडम है, वेदिक विजडम है, वो मॉडर्न बिजनेस से हम वो एंशियंट विजडम को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया जैसे श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो एक आदमी ने वहां पर एग्जाम्पल कोट किया। उन्होंने कहा कि जो टाटा ग्रुप के एक तरीके से ओरिजिनेटर थे वो थे जमशेद जी टाटा। तो जमशेद जी टाटा जो है उन्होंने निर्णय लिया कि जैसे जैसे भारत आगे आगे बढ़ रहा था, ब्रिटिश रूल था, तो उनकी इच्छा थी कि जो स्टील इंडस्ट्री है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज में फैला, तो उनकी इच्छा थी जो स्टील इंडस्ट्री है खासकर वो भारत में स्टैब्लिश कर। तो उन्हें सोचा कि मैं शिकागो में जाकर स्टील इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी को सीख कर मैं यहाँ पर स्टैब्लिश करूंगा भारत, ताकि जो है वो भारत भी एक प्रगति की तरफ बढ़ सके। तो वो शिकागो के की तरफ निकले और एक मालवाहक गाड़ी में निकले, कैरियर में निकले, बोट में निकले टू अमेरिका फ्रॉम इंडिया। तो उसी वाहक में, मालवाहक गाड़ी में एक और मुनि थे, एक और ऋषि थे, वो थे विवेकानंद। तो उन दोनों का मिलन हुआ उस कैरियर में, तो उन्होंने ऐसे बातचीत हुई, तो जमशेद जी ने कहा मेरी इच्छा है कि भारत में स्टील इंडस्ट्री की स्थापना। तो विवेकानंद को एक सलाह दी, उनको कहा कि ये तो अच्छी बात है, आप इंडस्ट्री तो खोल लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होगा देश के लिए कि आप जो टेक्नोलॉजी जिससे स्टील बनती है, इंगट्स बनते हैं, उस टेक्नोलॉजी को लेके आइए और यहाँ पर एक ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जिसमें जो भारत के नवयुवक है उनको ये ज्ञान दिया जा सके। तो ये आइडिया जमशेद जी टाटा को बहुत अच्छा लगा। तो जब वापस आए तो उन्होंने अपना काफी धन लगाया क्या खोलने में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और उसे जो है उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को फैलाने में जो है एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। तो उनका ये कहना था कि कैसे एक व्यक्ति ने जो है मॉडर्न बिजनेस को जो मॉडर्न बिजनेस को काफी हेल्प किया, अगर विवेकानंद गाइडेंस नहीं देते तो जमशेद जी टाटा कभी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलते नहीं, तो जो भारत में युवक है वो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे मदद कर सकते हैं, उन्होंने इसको उनको इन्वाइट किया कि आप हमें विजडम क्या दे सकते हैं मॉडर्न बिजनेस में। तो ऐसी वहां पर चर्चा थी। तो क्योंकि जो ये ज्ञान हमें मार्गदर्शन के लिए, तो हम देखते हैं कि इसलिए एक आचार्य की जरूरत पड़ती है जो कि हमें मार्गदर्शन दे सके। हालांकि विवेकानंद तो एक भौतिक दृष्टिकोण से ज्ञान दिया, लेकिन आचार्य बताते हैं कि कैसे हम इस भौतिक संसार से छूटकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो इसलिए आचार्य की जरूरत पड़ती है, और ये रास्ता कांटों से भरा। तो कलयुग में इतने सारे अपशुद्धांत है, इतने सारे धोखेबाज साधु हैं, तो सही और गलत के बारे में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे पथ हैं, ये नहीं पता चलता सही क्या गलत क्या। तो इसलिए भगवान अपने एक शुद्ध जीव को ये भेजते हैं ताकि वो सही धर्म की स्थापना कर सके और बता सके कि सही क्या और गलत क्या है। और वो बताते हैं कि जब भी वो सत्य के बारे में बोलते हैं, जब भी उन्होंने सत्य के विषय में प्रचार किया है, उनको काफी कठिनाई सहने का मिला है। जैसे हम जानते हैं जीसस क्राइस्ट, जब उन्होंने प्रीच किया तो उनको क्या फेस करना पड़ा, क्रूसिफिकेशन, उनको क्रूसिफाई कर दिया। उन्होंने किसी फिशरमैन को प्रचार किया, लेकिन उनके सत्य के प्रचार से उतने क्रोधित हो गए कि उनको जो है जान से खत्म कर दिया, क्रूसिफाई कर दिया। प्रॉफिट मोहम्मद जब उनको प्रचार किया, जब उन्होंने प्रचार किया, कुछ बताते हैं कुछ आदिवासी ट्राइबल लोगों को प्रचार किया, जब उन्होंने प्रचार किया तो उनको मक्का छोड़ना पड़ा क्योंकि इतना अवरोध उनको सहना पड़ा। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम आचार्य के जीवन में भी देखते हैं, जब वो धर्म की स्थापना करते हैं तब भी बहुत विरोध पैदा होता है। और वो कहते हैं भागवत में से एक बताते हैं प्रहलाद महाराज, जब प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे थे तो अपने पिता के बहुत प्रिय थे हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु छोटे से, किसी को भी घर में जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत प्रिय होता है, और वो आंखों का तारा था हिरण्यकश्यपु की आंखों के लिए प्रहलाद महाराज। और ऐसा वो बताते हैं कि एक पिता, अगर बेटा उसका काला भी होगा तो एक पिता जो है उसको सबसे सुंदर मानेगा, अगर बेटा अंधा होगा तो पिता तो उसको कमल नयन जैसे देखेगा कि उसे कमल जैसी आंख, तो अवगुणों को भी गुण देखता है पिता। लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब भगवान के विषय में चर्चा करनी शुरू की, जब उनको सही और गलत के बारे में बताया, तो वही पिता जो उतना प्रेम करता था अपने बच्चे से, अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसको मारने की कोशिश की, हाथों के नीचे को चलने की कोशिश की, पहाड़ से फेंक दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा असुर था। उस तरीके से बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु जब उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की तो मदाई ने उनको सर पे मारा, जब हरिदास ठाकुर ने भगवान के विषय में प्रचार करने की कोशिश की, लोगों को सही रास्ता दिखाया, तुमको 22 बाजारों में मारा गया, पीटा गया, ये सब सुनते हैं। इसलिए जो है वो आचार्य क्या करते हैं कि इस कांटे भरे रास्ते में से कांटों को हटाते हैं। जब कांटों को हटाएंगे तो क्या होगा, कांटे चुभेंगे। और वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, जब कांटों को हटाएंगे तो जब वो झाड़ियां हटेंगी तो अंदर शायद एक सर्प बैठा हो या जंगली जानवर बैठे, तो वो भी काट सकते हैं, उसका भी डर है। लेकिन एक आचार्य भगवान की शुद्ध भक्ति को स्थापना करने के लिए ये कठिनाई सहता है और धर्म की स्थापना करता है। और हम रामानुजाचार्य के जीवन में भी देखेंगे कि वास्तव रूप में धर्म क्या है वो स्थापित करते हैं, और उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आती है और कैसे उसे जूझते हैं, आज उसके विषय में चर्चा करें। तो रामानुजाचार्य का जैसे मैं बता रहा था कि 1017 AD में उनका जन्म हुआ, और तमिलनाडु स्टेट में मद्रास के पास एक जगह है भूतपुरी जहां पर उनका जन्म हुआ, और उनके पिता एक ब्राह्मण, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उनका नाम केशवाचार्य था, और माता कांतिमती थी। तो वो दोनों जो है उनके कई सालों से उनके घर में किसी का जन्म नहीं, किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ था। उनकी इच्छा थी। तो वहां पर ही पास में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भगवान पार्थ सारथी का, जो भगवान कृष्ण का एक रूप है जो अर्जुन के सारथी बने, तो उनके बहुत सुंदर विग्रह हैं। तो उनके पास गए एक बेटे की कामना के लिए कि हमारे घर में एक बेटे, एक संतान की उत्पत्ति। तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना की और कुछ ही महीनों में, एक साल में उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका जो कि है जिन जिनके पूरे शरीर में दिव्य लक्षण थे। तो कांतिमती के जो भाई थे उनका नाम था श्री शैलपुन, वो यमुनाचार्य के शिष्य थे और वो भी एक बहुत बड़े वैष्णव थे। तो जब वो उनको पता चला कि मेरे घर में एक बेटे का जन्म हुआ है, तो वो अपनी बहन को मिलने के लिए आए। तो जब बेटे को देखा तो देखा इसके अंदर सभी दिव्य लक्षण है। तो उसका दिव्य लक्षण को देखकर तो उनको लगा कि ये तो जो राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, हूबहू ऐसे ही लक्ष्मण, ऐसे ही उनके शरीर में चिन्ह है। तो उनका नाम रखा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का जन्म हुआ और फिर उनका नामकरण हुआ और फिर लक्ष्मण बड़े होने लगे। और जैसे लक्ष्मण बड़े हुए तो बहुत ही मेधावी शिष्य थे, जो भी एक बार सुनते वो सीख जाते, अपनी क्लास में टॉप करते और सबसे आगे बढ़ जाते। और फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो और सबसे अच्छी बात है कि बाकी लोगों के बहुत प्रिय थे, क्योंकि ना सिर्फ वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत गुणवान भी थे, बहुत अच्छे चरित्र के भी थे। तो सबको वो छोटा सा बालक लक्ष्मण बहुत प्रिय लगते थे। तो एक दिन वो भूतपुरी नाम की जगह पर रहते थे। तो थोड़ी ही दूर में एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है, इसका नाम है कांची, कांचीपुरम। ऐसा बताया जाता है कि सात पुरी है, सतपुरी, जो अगर वो सतपुरी में रहता है, अगर वहां शरीर छोड़ता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है, जिसमें से एक कांचीपुरम। तो बहुत प्रसिद्ध तीर्थ, और वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध विग्रह है भगवान के, कोई जानता है क्या नाम? भगवान वरदराज, वरदराज, वरदा, वरदा मतलब वर मतलब आशीर्वाद, दा मतलब देना। तो जो आशीर्वाद देने में सबसे आगे है, तो भगवान का एक नाम है वरदराज। तो भगवान वरदराज के विग्रह हैं भगवान कृष्ण के। तो एक भक्त थे, उनका नाम था कांची पूर्ण, वो रहते थे पूर्णमल्ली नाम की जगह से। तो ये जो जो रामानुजाचार्य या लक्ष्मण का जो जन्म स्थान था, उसका क्या नाम था?
भूतपुर।
भूतपुर। और भगवान वरदराज के शहर का क्या नाम था? कांचीपुर। और ये जो कांचीपुरम, और जो कांचीपुर नाम के वैष्णव थे, ये कहाँ रहते थे? पूर्णमेली नाम की जगह। दक्षिण भारत में हर नाम बड़ा कठिन। तो फिर ये जो कांचीपुर वैष्णव थे, ये भगवान के बहुत शुद्ध भक्त। तो हर रोज करीबन ऐसा लिखा है कि 50 किलोमीटर का रास्ता है इन दोनों के बीच। तो हर रोज अपने घर से 50 किलोमीटर पैदल जाया करते थे भगवान का दर्शन करने के, भगवान का पंखा करने के। और इनकी सरलता से, इनकी भक्ति को देखकर ये बहुत ही प्रसिद्ध थे और सभी इनको आदर करते थे। जैसे जैसे लक्ष्मण बढ़े, ये जो भूतपुरी जगह थी, ये कांचीपुर और जहां कांचीपुरम और जहां कांचीपुर रहते थे, इसके बीच में थी। तो जब कांचीपुर अपने गांव से 50 किलोमीटर का सफर करके जाते थे कांचीपुरम वरदराज जी के दर्शन करने के लिए, तो बीच में भूतपुरी नाम की जगह आती थी। तो यहाँ पर लक्ष्मण देखते थे हर रोज कि इतने शुद्ध वैष्णव यहाँ से जा रहे हैं, तो उनकी बहुत इच्छा होती थी उनकी सेवा करने की। तो फिर एक दिन उनको घर पर आमंत्रित किया कि मैं चाहता हूँ आपकी सेवा करने की। लेकिन कांचीपुर जो थे वो शूद्र परिवार से थे, और पहले जमाने में ये जातिवाद काफी होता था कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण के घर में नहीं आ सकता था, या ब्राह्मण शूद्र को पूछता नहीं था। जो लक्ष्मण थे ये तो ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ था, और जो ये कांचीपुर थे ये शूद्र जाति से थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि लक्ष्मण जो है वो कांचीपुर को अपने घर बुला रहे थे, क्योंकि पहले जमाने में अगर ब्राह्मण किसी शूद्र के परछाई पर भी पैर रख दिया करता था तो अपना को दूषित मानता था। तो हर एक अलग अलग चीज होती थी, शूद्रों का घर अलग होता था, उनका कुआं अलग होता था जहां से पानी भरते थे, उनका रहना सहना अलग होता था, और एक ब्राह्मणों का रहना सहना अलग होता था, इनकी जगह अलग होती थी, आपस में इंटरमिंगल नहीं करते थे। लेकिन लक्ष्मण शुरू से ये स्थापित करना चाहते थे कि किस वैष्णव जो है वो किसी जाति से संबंधित नहीं होते, वैष्णव जो है वो ना ब्राह्मण होते ना शूद्र होते हैं, वैष्णव स्थिति सबसे ऊपर होती है, जो भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है और वो सभी के लिए आदरणीय है। अब इस चीज को स्थापित करने के लिए लक्ष्मण ने क्या किया कि जो कांचीपुर जाते थे हर रोज भगवान के दर्शन करने के लिए और हमको पंखा दिखाने की। तो एक दिन उन्होंने आमंत्रित किया, कृपा करके आप हमारे घर पे आइए प्रसाद लेने के। और छोटे से बेटे थे तो कांचीपुरम कह रहे थे मैं तो शूद्र जाति का, मैं आपके घर पे कैसे आ सकता। तो उन्होंने बताया कि वैष्णव आपके शूद्र और ब्राह्मण जाति के नहीं होते, वैष्णव तो शुद्ध होते हैं और सभी के लिए आदरणीय होते हैं। तो जिद करके वो लक्ष्मण जी उनको घर पे अपने घर पे ले आए, उन खूब सेवा करने लगे और खाना खाकर उनके पैर दबाने लगे। कांचीपुरम तौबा तौबा करने लगे, उन्होंने कहा अगर किसी ने देख लिया तो मेरी भी पिटाई करेगा तुम्हारी भी पिटाई करेगा कि शूद्र जो ब्राह्मण शूद्र की सेवा कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो उन्नत वैष्णव है और वैष्णव की सेवा जो है भगवान को और भी प्रिय है, तो उनकी सेवा करने लगे और सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जो है कांचीपुरम वहां से चले गए। फिर जैसे जैसे लक्ष्मण बड़े हुए तो फिर उनको ज्ञान प्राप्त करना था, उनको स्कूल जाना था, तो वो एक पास में जो है वो एक अध्यापक थे जिनका नाम था यादव प्रकाश, तो उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो गए। यादव प्रकाश एक मायावादी थी और लक्ष्मण शुरू से भगवान की भक्ति में बहुत रुचि लेते थे और भगवान की भक्ति को जो है वो स्वीकार किया करते थे। लेकिन जो यादव प्रकाश था, हालांकि बहुत प्रसिद्ध था अपनी विद्वत्ता के कारण, लेकिन मायावाद की स्थापना करता था। वो कहता था सब एक ही है, एवरीथिंग इज वन, जीव और भगवान भी एक है और जितनी भी वैरायटी है वास्तव रूप में ये सब भ्रम है, इल्यूजन है, इसका प्रचार करते थे। लेकिन धर्म जो हमारी भक्ति का सिद्धांत उससे उल्टा है। जब लक्ष्मण यादव प्रकाश के पास पढ़ने के लिए गए तो उनकी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ कि वो लक्ष्मण जो है यादव प्रकाश की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे। जब पैर दबा रहे थे तो एक शिष्य एक प्रश्न लेके आए यादव प्रकाश के पास। उन्होंने प्रश्न पूछा यादव प्रकाश को, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि चंदोग्य उपनिषद में एक सूत्र आता है और सूत्र आता है कपि असम पुंडरीकाक्षम, इस सूत्र का मतलब समझाइए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा सरल सा सूत्र है और शंकराचार्य इसकी बहुत सुंदर टीका लेते हैं और वो कहते हैं कि कपि असम पुंडरीकाक्षम का मतलब कि जो अक्षम मतलब आंखें और पुंडरीकाक्षम मतलब पुंडरीक मतलब भगवान का एक नाम है, तो जो भगवान की आंखें हैं वो कपि असम के समान है। कपि असम मतलब कि द एनस ऑफ अ मंकी, कभी मतलब अंदर, असम मतलब उसका रियर पार्ट। तो उन्होंने कहा शंकराचार्य कहते हैं भगवान की जो आंखें हैं वो एक मंकी के एनस के समान है, ये बोलते हैं। साथ में कौन दबा रहा होता है उनके पैर, लक्ष्मण, क्योंकि यादव प्रकाश तो मायावाद को मानते थे, तो मायावाद के हिसाब से भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, और जो तथाकथित जो हम आकार को पूछते भी हैं ये एक इल्यूजन है, भ्रम है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, आकार भ्रम है। तो बड़ी सरलता से उन्होंने कह दिया कि भगवान की जो आंखें हैं किसके समान है, एक बंदर के पिछले भाग के समान है। लेकिन जब लक्ष्मण जो कि पैर दबा रहे थे तो उन्होंने सुना कि भगवान का जो दिव्य रूप है उसकी तुलना एक बंदर के एने से की जा रही है, उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। और लेकिन अपने गुरु को कुछ कह नहीं सकते थे, गुरु के की आलोचना नहीं कर सकते थे, तो लेकिन वो दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे तो रोने लग गए। और जब उनके आंखों में से आंसू टपकने लगे तो गरम गरम आंसू की बूंद यादव प्रकाश के पैरों पर गई। यादव प्रकाश को लगा कि अरे गरम ये पानी का छिड़काव कौन कर रहा है। तो उन्होंने फिर देखा, देखा तो लक्ष्मण रो रहे थे। उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम रो क्यों रहे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव जो आपने ये टीका दी इस सूत्र के ऊपर, ये टीका मुझे ठीक नहीं लगी। तुम्हें ठीक नहीं लगी तो तुम क्या समझते हो शंकराचार्य तुम ज्यादा जानते हैं। उनका मुझे वो नहीं पता, लेकिन शास्त्रों की मैं वाणी को जानता और जानता भगवान का रूप दिव्य है, भगवान का रूप किसी बंदर के पिछले भाग के ऐसा नहीं। कहता अगर तुम ज्यादा जानते हो तो तुम बताओ सूत्र का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ सूत्र, अगर आपकी आज्ञा है आपका आशीर्वाद है तो मैं आपको बताता हूँ सूत्र का क्या मतलब। तो कहते हैं कपि, कपि का मतलब एक बंदर भी होता है लेकिन कपि का मतलब सूरज भी होता है। किम जलम पीबती, कपि का मतलब ये भी होता है। किम जलम पीबती मतलब जिसमें इतनी शक्ति हो सब सारे पानी को सुखा सके। और वो कौन है? सूरज। तो कभी का एक मतलब सूरज भी होता है। और असम, असम का मतलब ब्लॉसम करना। तो कपी असम का मतलब है एक चीज जो सूरज में ब्लॉसम करते हैं। ब्लॉसम को क्या कहेंगे? खिलती है। तो कपी असम का एक मतलब है जो सूरज की किरणों से खिलता हो। तो ऐसी कौन सी चीज है सूरज की किरणों से खिलती है? कमल। तो कहते हैं कपी असम पुंडिका अक्षम, जो भगवान की आंखें हैं वास्तव रूप में किसके समान है? कमल के समान। इस शब्द का मतलब ये है। तो जैसे ही वो ज्ञान देते हैं यादव प्रकाश को, यादव प्रकाश को लगता है यानी तो मुझे भी ज्यादा जानता है। और ये टीका उसने कभी सुनी नहीं थी। उसने तो जो रटा था वो ऐसे हुबहू बोल दिया, लेकिन शास्त्रों का एक गूढ़ मतलब उसने आज भी कभी नहीं सुना था। तो उसके मन में बहुत ईर्ष्या होने लगी कि मेरे शिष्य मुझसे ज्यादा कैसे जानता है। तो उसके मन में बहुत आक्रोश होने लगा। फिर दूसरी बार जब वो कथा ले रहा था तो वो सत्यम ज्ञानम अनंतम भ्रम इस एक सूत्र के ऊपर तैत्रोपनिषद में से सुना रहा था कि भगवान जो है वो भगवान को निराकार है, वो तो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञानम अनंतम अनंत है और सत्य है वो निराकार। जब फिर से उन्होंने निराकार की बात की फिर किसको क्रोध आने लगा या बुरा लगने लगा? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को बहुत बुरा लगने लगा। तो लक्ष्मण जो है खड़े हो, गुरुदेव मैं क्षमा आपसे चाहता हूं, भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार, उनका निराकार भी रूप है, भगवान का साकार रूप भी। और फिर कहने लगे कि वस्त्र रूप में इस सूत्र का क्या मतलब है कि जो साकार भगवान है वो परम सत्य है, वो सभी ज्ञान के स्रोत है और वो अनंत, वो वस्त्र रूप में परम धर्म है। तो ये इस टीका की भी जो है वो यादव प्रकाश कुछ बोल नहीं पाया और सब बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती होने लगी। तो उसके हृदय में और ईर्ष्या जागृत हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि कांचीपुरम का राजा था, तो एक दिन राजा के जो बेटी थी उसको भूत सवार हो गए। तो ये जो यादव प्रकाश था ये भूतों के भगाने में बड़ा प्रसिद्ध था कि किसी को भूत सवार हो जाता था तो ये यादव प्रकाश को बुलाया करते थे कि ये कुछ झाड़ू वाड़ करेगा या कुछ मंत्र फूकेगा या पानी छिड़केगा, तो जिस पर भूत सवार होता था वो भाग जाता था। तो राजा ने क्या किया, ये तो बात प्रसिद्ध है, जो छोटी सी बात है मेरी बेटी को भूत सवार हो गया तो कुछ नहीं करना, यादव प्रकाश को बुलाना है, मंत्र हो गया पानी छिड़केगा झाड़ू मारेगा तो ये भूत भाग जाएगा। तो राजसभा बैठी, राजा ने बुलाया अपनी बेटी को और यादव प्रकाश को बुलाया। यादव प्रकाश बड़े गर्व से गया, उसको लगता बस बाएं हाथ की छोटी उंगली का कमाल है, कुछ नहीं करना। उसने मंत्र फूके, बेटी फिर से चला रही थी, उसने पानी फेंका, बेटी लोटपोट होने लगी, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। उसने झाड़ू मारा तो बेटी में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तो भूत भागा। उसने सारे प्रयास कर लिए। अब क्या हुआ, जो बेटी के अंदर, राजा की बेटी के अंदर भूत था वो बोल पड़ा। उसने कहा यादव प्रकाश तुम्हारी शक्ति बहुत निगण्य है, मेरी शक्ति तुमसे कई गुना ज्यादा है। सबके सामने भरी सभा सुन रहे थे, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ऐसी राजसभा, सब सुन रहे थे, राजा भी सुन रहा था, मंत्री भी सुन रहे थे, बेटी भी सुन रही थी, बेटी तो अलग ही दुनिया में थी और यादव प्रकाश भी सुन रहा था। लेकिन उस भूत ने कहा देखो यादव प्रकाश, अगर तुम इस बेटी का उद्धार करना चाहते हो, राजा की बेटी, और मेरा भी उद्धार हो सकता है, तो तुम क्या करो, जो तुम्हारे सबसे छोटे शिष्य है ना उसका नाम है लक्ष्मण, उसको यहां बुलाओ, वो उसके अंदर बहुत शक्ति है, जब वो अपने चरण कमलों को इस बेटी के सर पे रखेगा तब मेरा उद्धार हो रहा है, तब मैं शरीर को छोड़ दूं। तो यादव प्रकाश देख रहा था अरे ये क्या हो रहा है। तो राजा बोला बुलाओ बुलाओ इनके छोटे शिष्य को, लक्ष्मण को बुलाओ। तो उसके सैनिक गए और बोला कहाँ है इस यादव प्रकाश का शिष्य, कौन है, लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण को बुलाया गया। लक्ष्मण जब आए तो लक्ष्मण ने देखा ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई और सब कह रहे हैं कि तुम अपने चरण कमलों को सर पे रखो। तो उन्हें कहा मैं रख तो दूंगा लेकिन कैसे पता चलेगा कि भूत भाग गया। तो फिर उस बेटी के शरीर में से भूत बोलने लगा और भूत ने कहा कि जब मैं भागूंगा तो जो सामने पेड़ है इसकी जो सबसे मोटी शाखा उसको तोड़ के भागूंगा, जब वो टूट के गिर जाएगी तो समझ लेना मैं भाग गया, इस शरीर को छोड़ दे। तो लक्ष्मण ने क्या किया, अपने पैर उस बेटी के सर पर रखे, जैसी सर पर रखे बेटी जोर से चिल्लाई और जैसी वो चिल्लाई क्या हुआ, पेड़ की शाखा तोड़ के नीचे गिर गई। जैसे हुई सब हाहाकार करने लगे, सब बहुत खुश होने लगे, सब नाचने लगे और बेटी भी अपने सेंसेस में आ गई, वो भी बड़ी खुश होने लगी। तो सब चरणों में गिर गए किसके, लेकिन साथ में कौन खड़ा था, यादव प्रकाश। उसकी ईर्ष्या तो बस अब अंतिम सीमा तक आ गई और उसने निर्णय ले लिया कि अब तो मैं लक्ष्मण को मार के छोड़ू। तो उसने योजना अपने लक्ष्मण को मारने की, उसने कहा देखो मैं एक काम करता हूँ, यात्रा में चले जाता हूँ प्रयाग, और प्रयाग कांचीपुरम से बहुत दूर है, वो इलाहाबाद में है, वो मद्रास में है। उनने कहा मैं यात्रा में चलता हूँ और रास्ते में बहुत ऐसे गुप्त स्थान आते हैं, वहीं इसको खत्म कर दूंगा, और एक ब्राह्मण को मारने का पाप तो चढ़ेगा, तो फिर जाऊंगा प्रयाग में त्रिवेणी में संगम में स्नान कर लूंगा तो पाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो एक तीर से दो सवार बढ़े। तो ये सोचकर योजना बनाई और ले गया लक्ष्मण को। लक्ष्मण रास्ते में क्या हुआ कि लक्ष्मण के एक भाई थे गोविंद, तो उसने कहीं बातों बातों में सुन लिया यादव प्रकाश की योजना, तो उसने लक्ष्मण को बता दिया। लक्ष्मण वहां से भाग गए और भागे तो भी जंगल में चले गए। जंगल में भागते 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 वहां पर विश्राम कर रहे थे, तुमको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। लक्ष्मण ने किया इस जंगल से कैसे बाहर था पता नहीं, तो उन्होंने देखा कि दो शिकारी वहां से आ गए थे, एक शिकारी और उसकी पत्नी आ गई। तो शिकारी ने ऐसे पूछ लिया कि आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे अपने गाँव जाना है कांचीपुर। कहता हम भी वही जा रहे थे, मेरे चलते। कहता अच्छा बड़ी अच्छी बात है, तुमको लेने लगे। चलते चलते कई दिन बीत गए, फिर वो रात को किसी रुके, अगले दिन सुबह उठे तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे प्यास लग रही है। तो लक्ष्मण ने कहा आपने मेरी इतनी सेवा की तो मैं आपके पानी भर के लाता हूँ। तो पानी के लिए भरने को स्थान ही, तो मुट्ठी में पानी भर के लेके आया। जैसे मुट्ठी में भर के लेके आया, एक बारी दो बारी तीन बारी उस पत्नी को पिला, जब चौथी बार आया तो देखा दोनों गायब, शिकारी भी गायब और उसकी पत्नी भी गायब। तो उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो जैसे ही वो देखा कि पास में शहर है, जैसे शहर में घुसे, तुम लोग भाई साहब ये कौन सी जगह है, कहते ये कौन सी जगह है, कांचीपुरम। तारा में कांचीपुरम आ गया, बड़े खुश हुए। फिर वापस अपनी माता पास गए, वरदराज जी के पास गए, उनका दर्शन प्राप्त किया, धन्यवाद किया। फिर उनकी भेंट होगी कांचीपुरम से, तुमने कांचीपुरम को बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तुमने कहा वास्तव रूप में शिकारी और उनकी पत्नी कौन थे, लक्ष्मी नारायण थे, भगवान ने स्वयं तुम्हें रचना की। तो जब उन्होंने ये सुना तो उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञता आ गई, उनका गुणगान करने लगा, उस तरीके से उनका जीवन बचा। तो यादव प्रकाश कई महीनों का वापस आया, जब देखा दोबारा लक्ष्मण को तो बिल्कुल पागल हो गया। तो उसको लगा कैसे वो बच गया होगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि मैं जो है वो मैंने ऐसी रचना की, कुछ ऐसी योजना बनाई थी। तो उसको दोबारा गया कि देखो मुझे बड़ा दुख हुआ, हम तो बहुत ही परेशान हो रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे, तुमको ढूंढ रहे थे, तुम बिना बताए गए चले गए। देखो अब जब सब ठीक हो गया तुम दोबारा मेरे पास आकर पढ़ना शुरू कर, दोबारा पढ़ने शुरू कर। फिर वो लक्ष्मण जो है वो यादव प्रकाश के पाठशाला में पढ़ने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ 200-300 किलोमीटर दूर एक और जगह है जिसका नाम है श्रीरंगम रंग क्षेत्र, वहां बड़े प्रसिद्ध शहर है और वहां पर कौन से भगवान है, रंगनाथ जी। तो वहां पर एक बहुत बड़े वैष्णव थे यामुनाचार्य के नाम से। तो यामुनाचार्य एक बार वरदराज जी के दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए तो वहां की स्तुति करने लगे, और स्तुति करने के बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यादव प्रकाश वहां से जा रहा था। तो वैष्णव के लिए मायावादी जो है वो उनका दर्शन भी नहीं करना चाहते वैष्णव, तो देखे यादव प्रकाश जा रहा है तो उसको तो देखना नहीं चाहते थे, लेकिन यादव प्रकाश के साथ में एक छोटा सा बच्चा जा रहा था। उसको लगा ये बच्चा बड़ा आकर्षक, ये कौन है। तो उसमें पता किया तो लगा कि यार ये बेचारा तो इस मायावादी गुरु के चंगुल में फंस गया है, जिसको वहां से निकालना चाहिए। तो ऐसे सोच ही रहे थे, वहां से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कृपा करके उसको आप बचाइए, और बचाने के बाद फिर जो है वो ये प्रार्थना करके ये सोचने लगे कब मेरी मुलाकात होगी, लेकिन अगर मैं मुलाकात बच्चे से करूंगा तो गुरु से भी करनी पड़ेगी, वो मायावादी है तो उसको मिलने आना चाहते थे, तो वापस आ गए। तो करके वो वापस अपने गाँव में आ गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा, उनका नाम था महापूर्ण। तो जब महापूर्ण गए इस बेटे को लेके आने के लिए, तो वो श्रीरंगम से गए कांचीपुरम, कांचीपुरम गए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर वो यादव प्रकाश का एक शिष्य है लक्ष्मण करके। कहता हाँ लक्ष्मण करके है। तो उन्होंने कहा वो हमारे एक गुरु हैं यमुनाचार्य, उनसे मिलना चाहते हैं। तो उनकी भेंट हुई लक्ष्मण से, और लक्ष्मण और महापूर्ण दोनों जो हैं वो यमुनाचार्य से मिलने के लिए। लक्ष्मण बड़े खुश हो रहे थे कि इतने बड़े आचार्य मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं 4-5 दिन लग गए क्योंकि 300 किलोमीटर का रास्ता था कांचीपुरम से श्रीरंगम। तो जब वो वहां पर पहुंचे, 4-5 दिन की सफर तय करके, तो उनको एक बहुत बड़ी दुख घटना सुनने को मिली, एक दुख खबर मिली। क्या खबर मिली? कि यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया। तो जैसे ही महाप्रभु ने सुना, हाँ तो बिल्कुल पागल हो गए कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। उनके मन के आखिरी आदेश भी प्राप्त नहीं कर पाए, उसे सुन भी नहीं पाया, तो तुरंत भागे, और उनके पीछे भागे लक्ष्मण। जैसे वहां पहुंचे तो यमुनाचार्य का शरीर वहां पर लेटा हुआ था, तो खूब क्रंदन कर रहे थे, सब शिष्य क्रंदन कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ कि मुझे यमुनाचार्य से जो है वो उनके उनके उनसे मिलने को नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन लक्ष्मण ने एक विशेष चीज देखी कि यमुनाचार्य का पूरा शरीर तो ठीक था, लेकिन ऐसे 3 उंगलियां बंद थी, इस मुद्रा में थी, और एक हाथ ठीक था, एक 3 उंगलियां बंद थी, क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है पूरा सारे अंग ढीले हो जाते हैं, सब कुछ खुल जाता है। तो उन्हें पूछा, क्या यमुनाचार्य हमेशा 3 उंगलियां बंद करके रहते थे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो सोचने लगे और फिर कहने लगे, उनको मन में ऐसा उस आभास हुआ कि शायद यमुनाचार्य के 3 काम अधूरे रह गए थे जिनकी स्थापना करनी थी। तो उन्हें सोचने लगे ऐसा क्या काम हो सकता है। तो उनको साक्षात्कार हुआ, तो यमुनाचार्य के मृत शरीर के सामने उन्होंने कहा कि यमुनाचार्य की प्रसन्नता के लिए मैं वैष्णव धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार पूरे भारत में करूं। तो जब ऐसा कहा उन्होंने तो क्या हुआ, एक उंगली खुल गई, सब बिल्कुल हिल गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तथाकथित मृत शरीर में से एक उंगली खुल जाए? तो सब और ध्यान से देखने लगे, यमुनाचार्य को भी और लक्ष्मण को भी। फिर तो लक्ष्मण ने कहा कि शायद दूसरा कार्य तो अधूरा रह गया हो, तो वो मैं कार्य पूरा करना चाहूंगा। क्या? कि जैसे धर्म की स्थापना होती है प्रमाणिक शास्त्रों से, तो मैं वेदांत सूत्र के ऊपर वैष्णव धर्म की टीका लिखूंगा, उसके ऊपर भाष्य लिखूंगा। जैसे उन्होंने ये कहा, क्या हुआ, दूसरी उंगली खुली, तो वो और भी हैरान हो गए। फिर क्या हुआ, अब तीसरी उंगली बंद थी, 2 उंगली खुल गई थी और एक बंद थी। तो उन्होंने कहा कि जो सभी वैदिक शास्त्रों में रचयिता व्यासदेव, उनके पिता पराशर, जिन्होंने विष्णु पुराण लिखा है, तो मैं अपने शिष्य का नाम उनकी स्तुति में उनका नाम रखूंगा पराशर। जब ऐसा कहा तो तीसरी उंगली खुली, तो सब भक्त लोग देखने लगे कि वास्तव रूप में यमुनाचार्य की जो आंतरिक इच्छा थी कौन समझ रहे थे? लक्ष्मण समझ रहे थे। अब लक्ष्मण के ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व आ गया, ये 3 कार्यों की पूर्ति करने, कि वैष्णव धर्म का पूरे भारत में प्रचार करें, वेदांत सूत्र पर टीका लिखें, और एक पराशर मुनि के नाम से कि शिष्य का नाम रखें। तो उनके ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो वो शास्त्रों को पढ़ने लगे और जानना चाहते थे कि कैसे पूरे विश्व भर में लोग भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं। क्योंकि भगवान की से भगवान की भक्ति में जुड़ता है तो इस भौतिक संसार, एक कष्टमय संसार से छूट कर जो है परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। संसार का नाम है कुंठा, कुंठा ही कुंठा है, तो भगवान का जगत का नाम है वैकुंठ, जहां कोई कुंठा नहीं। तो क्या रास्ता है कि कोई व्यक्ति उस संसार में जा सकता है जहां कोई कष्ट नहीं? हर जीवन, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट जरूर रहता है। तो ये सोच ही रहे थे तो महापूर ने उनको कहा कि पास में एक बहुत बड़े आचार्य हैं जिनका नाम है घोष्टीपूर्ण, तो उनके पास एक ऐसे मंत्र हैं, अगर कोई उस मंत्र का उच्चारण करे तो उस मंत्रों के उच्चारण करने से वो भगवत धाम जा सकता है। तो तुम काम करो, घोष्टीपूर्ण के पास जाकर वो गुप्त मंत्र को प्राप्त करो। तो जब ये आदेश प्राप्त हुआ तो लक्ष्मण जो है वो तब तो उनका संन्यास हो गया था। लंबी कथा, मैं सब शायद समय में कह नहीं पाऊंगा, तो मैं कुछ मुख्य मुख्य चीज ले रहा। तो वो ये आदेश प्राप्त करके चले गए किनसे मिलने के लिए? घोष्टीपूर्ण से। ऐसा मंत्र प्राप्त करने के लिए कि जिससे अगर कोई जप करता है तो वो इस भौतिक संसार से छूट कर भगवान के धाम को जा सकता है। तो घोष्टीपूर्ण के पास गए। अब ऐसा कोई चीज आपको मिल जाए, एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप इमोर्टल हो सकते हो, तो कौन नहीं जाना चाहेगा? हम जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी के जो मालिक थे, जो डिज्नी वर्ल्ड के मालिक थे, वॉल्ट डिज्नी, वो भी ऐसी उनकी इच्छा थी, मैं कभी मरूं ना, तो उन्होंने वैज्ञानिक को रखकर अपने शरीर को जो है डीफ्रीज कर दिया कि कभी विज्ञान उस स्तर पे आ जाएगा मृत शरीर को भी जीवित कर दे, या फिर वो कभी मरे ना, या जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाए, तो वो फिर मेरे डीप फ्रीजर से मेरे शरीर को निकालकर जो है वो उस साइंस को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। उनके रिश्तेदार जो है वो इंतजार करते करते उस डॉक्टर को भी पैसे देकर उसको जो है उनके शरीर को खत्म कर दिया, क्योंकि डीप फ्रीज में रखने का बड़ा खर्चा था। कहते वो जब होगा सो होगा, पहले खर्चा तो बचे तो कंपनी ही डूब जाएगी, तो फिर बाद में पैसे कैसे देंगे। तो उन्होंने खैर उसको खत्म कर दिया। लेकिन ये ऐसा मंत्र था कि जन्म और मृत्यु के बंधन, मृत्यु को खत्म कर सकता था, इस बंधन को खत्म कर सकता था। तो जब गोष्ठी पूर्ण के पास गए तो पूछा कि आप कृपा करके वो मुझे मंत्र बताइए जिससे मृत्यु खत्म हो सकती है, जन्म खत्म हो सकता है, बुढ़ापा खत्म हो सकता है, मृत्यु खत्म हो सकती है, बीमारी खत्म हो सकती है। तो उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बार गए फिर मना कर दिया, तीसरी बार गए फिर मना कर दिया। ऐसे करते करते 17 बार हो गए। लक्ष्मण जाते थे, यमुनाचार्य रामानुजाचार्य जाते थे, गोष्ठी पूर्ण मना कर दिया करते। वो ये देख लेते हो कितने गंभीर हैं इस उपाय को लेने के लिए, क्या वास्तव में वो चाहते हैं जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए। तो लेकिन 17 बार रामानुजाचार्य जाने लगे, 18वीं बार गए तो फिर गोष्ठी पूर्ण ने समझा कि वास्तव में वो सच्ची में सिंसियर आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो मैं मंत्र दे रहा हूँ, वैसे मंत्र उसमें लिखा भी, तो मैं मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, ये मंत्र तुम किसी को बताना मत, और जो शुद्ध तरीके से इस मंत्र को उच्चारण करेगा उसी जन्म के बाद जो है वो मृत्यु के बंधन से छूट कर भगवान को प्राप्त कर देगा। तो रामानुजाचार्य ने वो मंत्र ले लिया और उसका जाप करने लगे। लेकिन उनके मन में आया कि ये मंत्र सगन मेरा उद्धार हो रहा है, लेकिन मेरा एक मिशन क्या है कि सभी जीवों का उद्धार, सभी को रास्ता मिले भगवान के पास जाने का, तो क्यों ना मंत्र सबको मिले। लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा क्या थी कि ये गोपनीय रखा जाए, किसी को प्रचारित ना। तो वो एक विडंबना में पहुंच गए कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर मैं गुरु की अवज्ञा करूंगा तो क्या होगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, और अगर ये मंत्र मैंने सभी को दे दिया तो सब भगवत धाम चले जाए। क्योंकि वो रमणाचार्य बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, उनको लगा अगर मैं एक तुच्छ व्यक्ति अगर नरक में चले जाता है, एक व्यक्ति के नरक जाने से सभी लोग भगवान के धाम चले जाते हैं तो बहुत फायदेमंद सौदा है, तो ऐसे कर लेना चाहिए, हृदय में इतनी करुणा थी। तो जब उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने क्या किया कि वो उस थान के सबसे बड़े मंदिर में गए और उसके छत पे चले गए और जोर से चलाने लगे कि भाइयों और बहनों मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि जो उसको जपना शुरू कर दे तो जीवन के अंत में बड़ी सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकता है, मृत्यु के बंधन से छूट सकता है, उसको बार बार मरना नहीं पड़ेगा, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार कठिनाई नहीं सहनी पड़ेगी, बार बार बुढ़ापा नहीं सहना पड़ेगा, बार बार उसको बीमारी नहीं सहनी पड़ेगी, तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, उसको बस ये मंत्र मिल सकता है। तो जैसे ऐसे बोलने लगा 10, 100, 1000, 1,000,000 लोग इकट्ठे होने लगे, और फिर सबके बीच में रामानुजाचार्य ने वो मंत्र बोल दिया। और वो मंत्र क्या था, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस संप्रदाय का मंत्र है, उस संप्रदाय का दूसरा मंत्र और सिमिलर था, वो था ओम नमो नारायण नारायण, हालांकि दोनों का एक ही काम। जोर से बोला कि आप सब इस मंत्र को लीजिए और हर रोज इसका जाप कीजिए कम से कम 16 माला, और जो ये करेगा वो भगवान के पास जा सकता है। तो हजारों लाखों लोग जाप करने लगे, हजारों लाखों लोग कीर्तन करने लगे, हजारों लाखों लोग खुल्ला खुल्ला मंत्र बोलने लगे। जो मन में बोलना था, जो उससे रामचरण गोपनीय रखना था, वो पूरे शहर में फैल गया, हर कुछ का उच्चारण कर रहा था। तो ये आवाज किसके कान में पड़ी, गोष्ठी पूर्ण के। उन्होंने कहा ये धोबी भी ले रहा है, ये मोची भी ले रहा है, चपरासी भी ले रहा है, तो हर कोई ले रहा है, ये मंत्र कैसे पता चला। तो उन्होंने कहा मैंने किसको मंत्र दिया था, रामानुजाचार्य। तो इतने क्रोधित हो गए, सीधा गए रामानुजाचार्य के पास। उन्होंने कहा तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, मैं तुम्हें ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गुरु की अवज्ञा से तुम नरक जाओगे। रामाचार्य उनके चरणों को छूकर का क्षमा मांगने लगे और कहते विनम्रता से कहने लगे कि गुरुदेव मैं निश्चित रूप से मानता हूँ मुझसे अपराध हुआ है और मैं जानता हूँ आपकी अवज्ञा करके मैं निश्चित रूप से नरक लोकों में ही जाता, लेकिन मुझे इस बात का खुशी थी कि अगर मेरे नरक में जाने से इतने सारे लोगों का उद्धार हो सकता है तो ज्यादा शेष कर। तो गोष्ठीपूर्ण ने ये देखा उनके भावना और कंप्लीट सेल्फलेसनेस, तो वो कहने वास्तव रूप में तुम भी मेरे गुरु के समान, ये करुणा तो मेरे हृदय में अंदर भी नहीं, बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा अपने बेटे को कि अगर तुम्हें कोई गुरु धारण करना है तो किसको धारण करो, रामानुजाचार्य को। इससे प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो उन्होंने देखा बहुत सारे योगी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और संभोग से समाधि, ऐसे कई सारे सूत्र थे। और वो कहते थे हमारे पास आएंगे और $50 देंगे या $35 देंगे तो आप सब ऐसा मंत्र ले सकते हैं जिससे आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे दिस जस्ट अ सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, अगर वास्तव में कोई ऐसा मंत्र है जो कि सभी का उद्धार करेगा तो वो तो पब्लिक होना चाहिए, सभी के लिए मिलना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो कि सभी के लिए उपलब्ध है और ये मंत्र मैं सबको दे रहा हूं, मुझे आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, इस मंत्र की कोई फीस नहीं है, जो भी इसका जाप करे वो भाव को प्राप्त कर सकता है। और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबके उपलब्ध है। लेकिन दुख भरी बात यह है कि लोग इसको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। हाँ, लेकिन स्वीकार करने को राजी नहीं। और पब्लिक कह रहे हैं साथ में फीस ही मिल रही, लेकिन वो भी लेने को तैयार, दुख की बात है। तो इस तरीके से 9:10 हो गए, मैं बहुत कुछ और कहना चाहता था लेकिन एटलीस्ट आपको मंत्र तो पता चल गया कि किसको आप जाप कर सकते हैं और भगवान तो प्राप्त कर सकते हैं। नहीं हाँ, तो आप और पढ़ सकते हैं, मैंने कुछ चर्चा की, ये किताब है द लाइफ ऑफ रामानुजाचार्य और एक किताब और है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द 4 आचार्य, इसको आप और पढ़ सकते हैं और रामानुजाचार्य की जो असली महिमा है उसको आप उसको जान सकते हैं उनके हृदय में। तो उनको आप जान सकते हैं और उनके जो विशेष हमारे जीवन में योगदान है उसको समझ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के समवेत भक्त वृंद के श्रीपाद रामानुजाचार्य अवतरभव तिथि महामहोत्सव के जय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।